आप लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने जो माता देवहूति को उपदेश किया श्रवण कर रहे हैं। कपिल भगवान के प्राकट्य की कथा श्रवण की। देवहूति को जब लगने लगा कि कहीं भगवान चले न जाए, भगवान के रहते हुए भगवान का सदुपयोग कर ले, एक शाम जो भगवान एक शिला पर बैठे थे, पत्थर पर बैठे, माता जी गई तो प्रणाम किए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, दूसरी बार सुनने की जरूरत पड़ी? देवहूति ने एक बार ही सुना, अर्जुन ने, मुझे लगता है जितने भी उपदेश हुए एक ही बार हुए, दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आप लोगों ने यह आज तक हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन विचार जब करता हूं तो समझ में आ भी जाता है इसी बात में, और जो समझ में आता है वो इस प्रश्न में छुपा हुआ है जो देवहूति ने कहा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम देवहूति बनकर के नहीं सुनेंगे, जब तक हम अर्जुन बनकर के नहीं सुनेंगे, जब तक हम परीक्षित बनकर के नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। देवहूति बनना क्या है, परीक्षित बनना क्या है, अर्जुन बनना क्या है, ऐसा नहीं है कि देवहूति की तरह हम भी दुखी हो जाएं। मतलब यह है कि संसार को आपने किस तरीके से लिया, किस तरीके से अनुभव किया, महत्वपूर्ण यह है। देवहूति की पहली बात सुनिए। देवहूति कहते हैं कि महाराज मैं बहुत थक गई, थक गई। आपको कभी थकान महसूस होती है? संसार की थकान, थकान से मतलब है अचानक। आदमी दो ही अवस्था में रुकता है, बंगाली भाषा में थकना मतलब रुकने को बोलते हैं, कोई थक गया नहीं रुक गए। तो मुझे लगता है कि दो ही अवस्था में व्यक्ति थकान महसूस कर सकता है, या लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो वो रुक जाएगा, अथवा चलते चलते थक गया, परेशान हो गया तो वो रुकेगा, दो ही अवस्था में रुकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको कहीं चलना है, चलते चलते थक गए, परेशानी महसूस हुई तो आप रुक गए, या फिर लक्ष्य जब मिल गया तब आप रुक गए। आपने कौन सी थकान महसूस की? विचार करने लायक बात यह है। तो हमें जहां तक लगता है कि हमने एक भी थकान महसूस नहीं की, क्योंकि लक्ष्य तो हमसे दूर है ही, और साथ साथ में संसार से हम आज तक नहीं थके, संसार से आज तक हम परेशान नहीं हुए, इसलिए हमारी दौड़ अनवरत जारी है, हम दौड़ रहे हैं, हमारी दौड़ नहीं रुकी, हमारी दौड़ नहीं थमी है। हम कहां थमे, अभी भी दौड़ रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं। देवहूति कहती है कि मैं थक गई, अब नहीं दौड़ सकती, लेकिन हम अगर आंख ने दौड़ना बंद कर दिया तो चश्मा लगा के उसको दौड़ाते। आंख ने कहा नहीं सामर्थ्य है अब देखने की, कान ने कहा नहीं सामर्थ्य है सुनने की, तो हम उसको मशीन लगा करके सुनाते, हम उस थकान को महसूस नहीं करते जिस थकान को देवहूति ने महसूस किया। निर्विण्णा नितरा भूमन नसविन्द्रिय दर्शनात्। अच्छा, थकान महसूस क्यों हुई, पूछा क्या करते हुए थकान महसूस हुई, कौन सा काम करते करते आप थक गए? तो कहा इन इंद्रियों की प्यास बुझाते बुझाते। आंख ने कहा रूप दिखाओ दिखाया, कान ने कहा शब्द सुनाओ सुनाया, जीभ ने कहा रसगुल्ला खिलाओ खिलाया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। अच्छा, एक महात्मा है वो कहा करते हैं, कि आप कितनी रोटियां खाते हैं, जल्दी लोग बताते नहीं। मैं मानता हूं कि अगर आप दिन में दो रोटी भी खाते हो तो दोनों टाइम मिलाकर के चार रोटियां हो जाती हैं। एक महीने का क्या हिसाब होगा, फिर एक वर्ष का क्या हिसाब होगा, फिर आज तक की उम्र का क्या हिसाब होगा, जरा जोड़ी तो कितना सब खाया लेकिन तृप्ति हुई मालूम ही नहीं पड़ा, खत्म हो गया। आंख को कितना कुछ दिखाया लेकिन इस आंख ने एक बार भी ये कहा कि भाई तुमने बहुत दिखाया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब देखने की जरूरत नहीं। हो गई तृप्ति, बस अब तुम अपना काम कर सकते हो। अभी तक तुम हमारे लिए जिए, अब तुम अपने लिए जिए। इस आंख ने एक बार भी धन्यवाद भी नहीं कहा। सामने वाले को आप एक गिलास पानी देते हो तो सामने आप ये अपेक्षा करते हो कि सामने वाला भी हमको थैंक यू कहे, धन्यवाद कहे। लेकिन इन आंखों के लिए हम जिए, इन कानों के लिए हम जिए, लेकिन इन्होंने तो कभी कुछ धन्यवाद नहीं कहा। और हम तो भी खुश हो जाते, हम तो भी प्रसन्न हो जाते अगर इनकी तृप्ति भी हो जाती, लेकिन ये तृप्त भी नहीं हुई। हमारा काम सफल हो जाता, हम सक्सेस हो जाते जिंदगी में अगर ये आंख कह देती कि बस पूर्ण हो गए, हमारी कुछ इच्छा नहीं। और मुझे लगता नहीं कि संसार में अब देखने की कुछ इच्छा रही हो, देखने की कोई चीज ऐसी रही हो, ऐसा कोई रंग बाकी है जो हमने न देखा हो, ऐसा क्या है जो शेष रह गया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। इस बात को हम अनुभव नहीं कर पाते, देवभूति कर लेती। कौन सी ऐसी चीज है जो हमने नहीं खाई? हमारे महात्मा उनके दांत नहीं, तो हम लोग चने खा रहे थे, तो हमने सोचा कि उनके तो दांत नहीं है तो उनको देने से कोई फायदा नहीं, कैसे खाएंगे, मैंने नहीं दिए। तो उन्होंने हमसे शिकायत किया कि आपने चने क्यों नहीं दिए मुझे, तो हम कहा आप खाते कैसे, दांत ही नहीं आप। तो कहा कि तुम देते तो सही, मैं पीस के खा लेता, कूट के खा लेता। मुझे बड़ा तरस आया, दुख हुआ कि क्या उन्होंने कभी चने खाए नहीं होंगे, उसकी अनुभूति की नहीं होगी। लेकिन एक महात्मा हुए भोले बाबा, उन्होंने लिखा है तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, मुख हो गया है पोपला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, सब कुछ खत्म हो गया लेकिन ये तृष्णा समाप्त तो नहीं होती। इस बात को देवभूति ने अनुभव किया, हमने नहीं किया, फर्क कितना है। तो ये न संभाव्यमाने न प्रपन्नांदम तमा प्रभु, इंसान इंद्रियों की पिपासा समाप्त नहीं होने के बाद भी उनके पीछे क्यों पड़ा है? तो कहा क्योंकि वो अंधकार में, बहुत बढ़िया, अंधेरे में, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, उसे सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए वो बार बार पीछे पड़ा है। देवूति कहते हैं महाराज हम तो अंधे हो गए, हम सिर्फ अंदाजे से चल रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमें जाना कहां है, लक्ष्य नहीं मालूम है, सिर्फ अंदाजे से भाग रहे हैं। कपिल ने कहा हम क्या करें, तो बहुत बढ़िया बात है कि हम जैसे अंधे लोगों के लिए आप आंख बन करके प्रकट हुए। भगवान जब भक्त के ऊपर कृपा करता है, साधक के ऊपर कृपा करता है, तो संत के रूप में उसे प्राप्त होता है। तो संत क्या है विचार करना, तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्विपारगम सचक्षुर जन्म नामन्ते। तो महात्मा क्या है, बोले महात्मा है आंख, संत आंख है। और महात्माओं ने यहां बताया कि इस संसार को अगर आप अपनी आंख से देखोगे तो ये दुनिया कुछ और नजर आएगी, और इस संसार को जब संतों की आंख से देखोगे, महात्माओं की आंख से देखोगे, तो ये संसार तुमको असली नजर आएगा, वास्तविक नजर आएगा। और अंधा होना बुरा नहीं, अंधा होना मुझे ज्यादा खराब नहीं लगता है, लेकिन वो ज्यादा बुरा है जब कुछ का कुछ दिखाई देने लगे। तो हमें आज कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, यही हमारी समस्या है। तो कहा प्रभु आपने कृपा की, हमारे ऊपर पधारे, बस अब आप हमको मुक्त कर दीजिए। कपिल ने कहा क्यों, आपका हमारा संबंध क्या है भाई, आप हमारी मां हैं, हम आपके बेटे हैं, इसलिए हम आपको उपदेश करें, इसलिए आपको हम ज्ञान बताएं, भक्ति बताएं। तो कहा नहीं, ये संबंध नहीं। तो तंत्वागता हम शरणम शरण्यम, हम आपकी शरणापन्न हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं, हम आपकी शरण में पड़ी हुई हैं। आपको याद होगा गीता में भी भगवान ने तब तक उपदेश शुरू नहीं किया जब तक कि उसने शरणागति को ग्रहण नहीं किया, शरणापन्न नहीं हो गया। कार्पण्य दोषो पातस्वभाव प्रच्छामि काम धर्म सम्पूर्ण चेता, शिष्यस्ते हम सबसे पहले स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूं। और तब आप गीता उठाइए कि जहां उसने शिष्य स्वीकार किया उपदेश शुरू, अशोचानम अशोचस्तम प्रज्ञावादा शुभाष। इससे पहले अर्जुन ने बहुत बातें की हैं लेकिन भगवान ने उपदेश शुरू नहीं किया, डांटा है, क्लेद्यम मास मग पार्थ नुपद्यते, गालियां दी हैं एक तरीके से। उपदेश तब शुरू हुआ जब शिष्य को स्वीकार किया। तो कपिल ने जहां देखा कि मां शरणागत है और ये भी कह रही है कि महाराज इस संसार जो है ना, संसार रूपी जो वृक्ष है इसमें कांटे लगे हुए हैं, मैं बहुत इनकी चुभन से परेशान हो गई हूं, इसको काटने के लिए आप कुल्हाड़ी बनकर, कुल्हाड़ी जानते हैं लकड़ी काटते हैं, वो बनकर के आ गए, कृपा कीजिए। तो भगवान कपिल ने सीधे उपदेश किया, कोई भूमिका नहीं, और वास्तविक उपदेश किया सत्य तत्व। हमारे यहां की एक और परंपरा है कि यहां सिद्धांत को पहले कहते हैं, इस बात को समझना, हमारे यहां सिद्धांत को पहले कहते हैं और बाद में उसको कैसे पाया जाए साधन बाद में कहते हैं। दूसरे लोगों के यहां साधनों का वर्णन खूब है, सिद्धांत का आता ही पता नहीं। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसे विधान करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, लेकिन किस लिए करना चाहिए मालूम है। यहां पहले बताया कि किस लिए करना चाहिए और फिर बताया कि क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कोई माने ना माने लेकिन सच्ची बात है, योगाध्यात्म का पुंसा मतो निश्रेय सायमे। भगवान कपिल कहते हैं कि माताजी आप मुक्त होना चाहती हैं, तो कहा कोई संशय, बोले नहीं, तो कहा अगर वास्तव में आप उस परमानंद की अनुभूति करना चाहती हैं, मुक्त होना चाहती हैं, तो कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है। वेद कहते हैं नान्या बंधा विद्यते अनाय, इसको छोड़ के कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कौन सा मार्ग है? आध्यात्मिक योग, ब्रह्म विद्या जिसे आप कहते हो, ब्रह्म विद्या, इसको छोड़ के कोई विकल्प नहीं। और अगर कोई कहता है कि ब्रह्म विद्या को छोड़ करके भी दूसरा विकल्प है, भगवान कपिल कहते हैं वो गलत कहता है, झूठ कहता है। रस्सी में आपको सांप दिख रहा है, वो सांप कैसे मिटेगा जरा बताओ, कोई उपाय है? प्रकाश से, प्रकाश के अलावा कोई रास्ता है? सपने में आपने देखा कि कोई आपको मार रहा है, आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो दर्द कैसे मिटेगा? दूसरा कोई विकल्प है? और अगर कोई दूसरा विकल्प कोई कहता है तो मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जागने से ही स्वप्न की भ्रांतियां मिटेंगी, जागने से ही स्वप्न के दुख मिटेंगे, ऐसे ही संसार के दुख अगर मिटाना चाहते हो एकमात्र रास्ता है ब्रह्म विद्या, विचार, विवेक, कोई दूसरा विकल्प नहीं। किसी ने कहा महाराज वेदों में तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका ही वर्णन है, कर्म उपासना ज्ञान तीनों का ही वर्णन, आप कहते हो कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, सिर्फ ब्रह्म विद्या, तो भक्ति और कर्म का कोई उपयोग नहीं? बोले नहीं नहीं, ये किसने कहा कि उपयोग नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी भूख कैसे मिटेगी? बोलो, खाने से, ठीक, भोजन नहीं होगा तो भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी, खाने से मिटेगी। तो फिर तवा, कुकर, चिमटा, इनका कोई उपयोग नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है? इनकी जरूरत है भोजन बनाने के लिए, इनसे भोजन बनेगा। लेकिन एक बात बताएं कि अगर तवा, चिमटा, कुकर नहीं होंगे तो भी चलेगा, अगर हो तो आप स्वादिष्ट, बढ़िया, सुंदर भोजन बना सकते हो, अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन बना सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो भी तुम कुछ खाके तो भूख तो मिटा सकते हो। बाटी बना लिया, कुछ भी बना लिया, लेकिन अगर तवा, चिमटा, कुकर सब हो, खाने का इंतजाम न हो, तो भूख नहीं मिट सकती। एक विकल्प है, एक विकल्प है आध्यात्मिक योग। योग आध्यात्म का पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, कल्याण के लिए सिर्फ एकमात्र। अच्छा ये कैसे मालूम पड़े? कि हम उस अवस्था में पहुंच रहे या हम पहुंच गए। तो भगवान कपिल कहते हैं अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। जिस समय आप वहां पहुंचोगे वहां पर संसार के सुख और दुख दोनों मिट जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, संसार से छूटना मुश्किल नहीं है, संसार के दुखों से छूटना मुश्किल नहीं है। संसार के दुख से आप कल छूट जाओ, कल अभी छूट जाओ, तो बात समझना। संसार के दुखों को हम अपनाते हैं, पकड़ते हैं, कैसे? क्योंकि संसार के सुखों की चाह करते हैं। संसार के सुखों की अपेक्षा अगर तुम्हारे मन में न हो, संसार के किसी भी दुख में ये ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी कर दे। संसार के सुखों को चाहते हो तो संसार का दुख तुम्हें दुखी करता है। होगा कैसे ये सब? तो कहा इसी मन से, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो चेता खलवस्य बंधाय मुक्त आत्मनो मतम। यही चित्त तुम्हारे बंधन का कारण है, यही चित्त तुम्हारी मुक्ति का कारण है। कौन सा मन बंधन करता है, कौन सा मन मुक्त करता है? तो बताया जो मन परमात्मा में आसक्त है, रत है, परमात्मा चिंतन में रत है, वो मुक्त करता है। गुणेषु सक्तम बंधाय, और जो गुणों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, वो बंधन करता है। तो कहने लगे महाराज एक बात बताइए, ये सारी चीजें समझ में कैसे आएंगी? आपने तो एक लाइन में कह दिया और हम समझ भी लेंगे, लेकिन आगे के लोग जो सुनेंगे उनको ये बातें कैसे समझ में आएंगी? एक झटके में मालूम नहीं पड़ेंगी। कौन समझाएगा इस तत्व को? परमात्मा में चिंतन कैसे करेगा मन? परमात्मा का चिंतन मन कैसे करेगा? वो तो उपाय बताइए। तो कहा एक उपाय है, क्या? बोले महात्माओं का साथ, संतों का साथ करो। और भगवान कपिल ने एक इतिहास वाली बात कही, इतिहास बन गया, वो इतिहास में लिख गया स्वर्णाक्षरों। संग जी जानते हो आप लोग, संग आसक्ति ये बंधन का कारण है। संग की बड़ाई प्रशंसा आज तक किसी ने नहीं किया, संग बड़ा खराब, आसक्ति बड़ी बेकार। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं यही आसक्ति अगर संतों के साथ में हो जाए तो मोक्ष द्वार मुपावृतम, मोक्ष का बंद दरवाजा खुल जाता है। प्रसंग मजरम है तो प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मुपावृतम। बोले महात्मा कैसे होते हैं? वो भी तो समझ में आए, तो बताया तिक्षवा कारुणिका स्मृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता सारव साधुभूषण मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते व्यक्तवरमाण त्यक्तस्वजन बान्धवाः। महात्मा होते हैं तितिक्षु, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम। संतों का लक्षण किया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये इसलिए नहीं लक्षण किया है कि तुम दूरबीन लगा के दूसरों को देखने लग जाओ कि वो ऐसा है कि नहीं। ये इसलिए लक्षण किए क्योंकि संत ही उस परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो हम भी संत बने। अगर हमें संत बनना है तो देखो ये कपड़ा जो लाल पहन ले, ऐसा बढ़िया तिलक ऐसा लगा ले चाहे ऐसा लगा ले, वो महात्मा होता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। संतों के लक्षण जहां भी आए हैं ना, वहां वेश पर चर्चा नहीं हुई, वहां गुणों पर चर्चा हुई, स्वभाव पर चर्चा हुई। तो संत कौन है? आप भी संत हो सकते हैं, हम भी संत हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम संत हों। कपड़े पहनने से भी महात्मा थोड़ी होता है, स्वभाव। तो कौन है महात्मा? तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब क्या होता है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सारे दुखों को जो बिना किसी परेशानी के सहन कर लेता है वो तितिक्षु होता है। आपको गर्मी लग रही है तो आप सहन कर पाओगे? मुश्किल है। लेकिन आपने लोहार को देखा है? लोहार वो गर्मी में धूप में खड़े होकर आग के सामने और लोहा को कूटता है, उसको गर्मी लगती होगी? बोलो, नहीं लगती। नहीं लगती क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो जो काम कर रहा है इस काम के बदले में उसको पैसा मिलेगा। लक्ष्मी दृष्टि होने पर दुख महसूस नहीं होता, पता ही नहीं चलता। हम आपको कहते हैं कि आधा घंटा खड़े होकर जप करो तो पैरों में दर्द होने लगेगा। अब तो लोगों से बैठा ही नहीं जाता, खड़े होने की बात छोड़िए, परेशानी होने लगती। लेकिन आप जरा सोचिए, विचार कीजिए कि बस में टिकट देने वाला कंडक्टर दिन भर खड़ा रहता है, उसको दुख होता है, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में दृष्टि है। तो तितिक्षा मतलब यह है कि जिस समय आपकी दृष्टि लक्ष्य में होगी, उस समय पर अगर आप कोई साधन करोगे, आपको दुख महसूस नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्य में दृष्टि होने पर दुख का आभास ही नहीं होगा। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख हो और उसका आभास ही ना हो, उसकी प्रतिक्रिया ही ना हो, परेशानी तो होगी। मैं कहता हूं नहीं होगी। अगर आपका मन कहीं दूसरी जगह है तो दुख आएगा तो भी पता नहीं चलेगा। यही मुंबई की घटना है कि एक बहन आई और रिक्शा पलट गया, जा रही थी, कुरला की बात, कीचड़ में गिर गई, कपड़े वगैरह गंदे हो गए, बड़ी शर्म आई कि लोग देख रहे थे, तो जल्दी जल्दी उठी और भागी, दूसरा रिक्शा पकड़ा, चली गई। तो देखने लगी क्या क्या गंदा हुआ है, तो पूरा कपड़े देखी, बाद में देखा कि खून भी लगा। आप जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरा उनका जो पैर का पिछला भाग है ना, एड़ी बोलते, पूरा कट गया था। लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका मन दूसरों को देख रहा था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, भागो यहां से, और जब देखा तो रोने लगी, बेहोश हो गई। ऐसे ही जब आपका मन अपने लक्ष्य में होता है तो कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, वहां उसको कष्ट का आभास नहीं होता। तो तितिक्षु का मतलब है सहनशील। इसकी दूसरी परिभाषा एक समझना, तितिक्षु का मतलब है जो अपने कष्ट को महत्व नहीं देता। ध्यान रखना, ये सरल परिभाषा। तितिक्षु का मतलब है जो अपने कष्ट को महत्व नहीं देता। हम क्या करते हैं, हम अपने छोटे से कष्ट को बड़ा भारी बताते हैं, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानियां हैं, और दूसरे का कष्ट देखते हैं तो उसको समझाने लगते हैं, क्यों परेशान होते हो भाई, ये तो मुश्किलें आती रहती हैं। तो दूसरे की परेशानी हमें परेशानी महसूस नहीं होती और अपनी छोटी सी परेशानी बड़ी भारी मालूम पड़ती है। ये सामान्य आदमियों की पहचान है। और महात्मा लोग कैसे होते हैं, तो कहा कि अपनी बड़ी सी बड़ी परेशानी उनको महसूस नहीं होती, पता नहीं चलता है, सहन कर जाते हैं, लेकिन दूसरे का थोड़ा भी दुख देखते हैं तो कारुणिका रो पड़ते हैं, सहन नहीं होता, दूसरे का कष्ट उन्हें सहन नहीं होता। तितिक्षवा कार्मिका सूर्य सर्वदेहिनाम, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं, सिर्फ मनुष्य की नहीं, सिर्फ अपनी नहीं, सभी को, जिसको देखा हमारे यहाँ का तो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण। और अजात शत्रु, उनका कोई दुश्मन नहीं होता, उन्हें भले ही कोई दुश्मन माने, जमाना दुश्मन मानता रहे, लेकिन वे किसी को दुश्मन नहीं मानते, शांत होते हैं, साधु होते हैं। साधु का मतलब कपट रहित होते हैं, निश्चल होते हैं, कोई कपट नहीं होता, जैसे अंदर होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं। और साधुभूषण, संतों का सम्मान करते हैं, मई अनन्य भाव है न भक्ति कुरवंती ये दृणाम, ये सबसे बड़ा लक्षण बताया कि ऊपर के जो लक्षण है उनमें से एक भी हो न हो चलेगा, लेकिन ये होना जरूरी है। कहा कि उनका मेरे में अनन्य भाव होता है, अनन्य प्रेम होता है, वे मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं मतलब अनन्य भाव से चाहते हैं। अनन्यता का मतलब समझ में आया, अनन्य का मतलब जहां कोई दूसरा आश्रय न हो। मैंने किसी से सुना है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, शायद आपने सुना हो, कल्पना है किसी की लेकिन अच्छी है। क्या नाम था मैं भूल गया, लैला और मजनू, मजनू मर गया, खुदा के पास गए, तो खुदा ने पूछा और कहा, या यमराज के पास गया मान लीजिए, तो यम ने कहा कि जितना तुमने लैला को चाहा, ध्यान से सुनो, जितना तुमने लैला को चाहा उसका आधा भी अगर तुम भगवान का ध्यान करते, भजन करते, तो मुक्त हो जाते, कल्याण हो जाते। मजनू ने कहा कि मैं आधा नहीं दुगुना भजन करता अगर तुम्हारा परमात्मा लैला के रूप में होता। इसे कहते हैं अनन्यता। मुझे बहुत अच्छा लगा। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कहे कि तुम्हारा भगवान छोटा है उसकी बातों में मत आओ, कोई कहे कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, तो राम का भजन करो, तो तुम कहो कि जरूर करते अगर कृष्ण राम के रूप में होते, हम जरूर भजन करते अगर राम कृष्ण के रूप में होते। अपनी अनन्यता में खोट मत आने दो। इतनी निष्ठा अगर तुम्हारी परमात्मा में है तो कहा तुम सबसे बड़े महात्मा हो, तुम्हें दूसरे लक्षणों की जरूरत नहीं। और अगर ये लक्षण नहीं है तो सारे लक्षण बने रहे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे महात्माओं ने एक उदाहरण दिया है, आपको अजीब लगेगा कि अगर कोई महिला सारे श्रृंगार किए हो, 16 श्रृंगार बोलते अब तो 16 से भी ज्यादा होंगे, पुराने कवियों की कल्पना है, तो 16 श्रृंगार अगर कोई किए हुए महिला हो लेकिन उसका पति ना हो, उन श्रृंगारों की कोई मायने है, कोई कीमत। और एक महिला ऐसी है कि जिसके श्रृंगार के लिए कुछ भी नहीं लेकिन उसका पति है, उसका सुहाग है, तो वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है, उसे किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही कोई ऐसा भक्त है जिसमें ऊपर के सारे गुण है, तितिक्षु भी है, करुण हृदय भी है, सबका कल्याण भी चाहता है, अजात शत्रु भी है, शांत भी है, साधु भी है, साधु भूषण भी है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो कहा कि वो वैसे ही है बिना पति का। और ऊपर का एक भी गुण नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति है, तो कहा ये सारे गुण भाग भाग करके उस पे आएंगे कि थोड़ी सी जगह हमको दे दो अपने बैठने, अपने यहां बैठने के लिए। सारे गुण कहेंगे कि हमको बैठने के लिए जगह दे दीजिए, हम रहना चाहते हैं। गुणों को बुलाना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सद्गुण कैसे आए हमारे में, हम कहते हैं सद्गुणों को बुलाने की जरूरत ही नहीं, वे अपने आप आएंगे। तुम अपने मन को भगवान में लगाओ तो सही, लेकिन ये भी बड़ी समस्या लोग बना लेते हैं कि भगवान में मन कैसे लगे। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी जब करते तो मन नहीं लगता, मन कैसे लगे। हमने कहा मन लगाने से ही लगेगा, इसका यही एक उपाय और कोई विकल्प नहीं। कहा नहीं बताइए, बैठते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो हमने कहा खड़े होकर के करो, बैठते हो परेशानी होती, घुटने दर्द करते हैं तो ये करता, तो उनका खड़े होकर बोले और समस्या, उसमें तो बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। तो हमने कहा कि चलो बता देते हैं एक बात, हो भजन होना चाहिए कैसे भी हो, चाहे बैठ के हो चाहे लेट के हो, समस्या क्या है। तो हमने कहा लेट के करो, तो कहा नींद आ जाती है। अब उनका अब क्या करूं मैं, उसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, बैठ के तुम कर नहीं सकते, खड़े होके मुश्किल है, लेट के कहा तो कहते हो नींद आ जाती, अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा नींद आ जाती तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, तुम भजन करते करते सो जाओ ये भी अच्छा है, इसमें भी कुछ बुराई नहीं, लेकिन तुम करो तो सही, कुछ तो करो। मैं कहता हूं कि अगर आपको लेटे लेटे करने में नींद आती है तो सो जाओ, भजन करके सो जाने से बेहतर और कुछ भी नजर नहीं आता, बहुत अच्छी बात रहेगी, चित्त में वही संस्कार रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन करो। पूछा देवभूति ने कि महाराज इन संतों का साथ किया तो क्या होगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, चोर का साथ करोगे तो चोरी की विशेषताएं बताएगा, शराबी का साथ करोगे तो शराब की खूबियां गिनाएगा, एक घूट पी लो सारे गम भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। ऐसे ही महात्मा लोगों का साथ करोगे तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ये तुम्हें बताएंगे मेरा पराक्रम, ये तुम्हें बताएंगे मेरी विशेषताएं, ये तुम्हें बताएंगे कि परमात्मा है क्या, कैसा कृपालु है, कैसा करुणा करने वाला है। भगवान की महिमा को बताने वाले संतों के अलावा तुमको कौन मिलेगा। मैं हमेशा एक बात पूछा करता हूं लोगों से, आप बताइए जरा, जब तक आप संतों के साथ में नहीं आए थे, संत मतलब खाली लाल कपड़े वालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जितनी वृत्तियां मैंने गिनाई है वैसे इन महापुरुषों के साथ में जब तक आप नहीं जुड़े थे, क्या आप जानते थे कि ये दुनिया झूठी है और संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। ईमानदारी से बोलो, ये सत्य बात कहने वाला सिर्फ और सिर्फ महात्मा ही हो सकता है। देवभूति बड़ी प्रसन्न हुई, उसके बाद में फिर भगवान से और प्रश्न किए और क्रमशः सारे प्रश्नों का समाधान भगवान कपिल ने किया। योग के विषय में पूछा, भक्ति के विषय में पूछा, कर्म के विषय में पूछा, सभी के बारे में भगवान ने देवभूति को बताया। और अंत में भगवान कपिल ने कहा कि माताजी और कुछ पूछना है, तो कहा कुछ जानने की अभिलाषा नहीं, कुछ समझने की पूर्ण हो। माताजी से कहा मोक्ष में कोई संशय है, मुक्ति में कोई संदेह है। माताजी ने बहुत बढ़िया बात कही, अहोबत शपचो तो गरियान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहु सष्मयादिया ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथिये ते। कहा महाराज आप कहते हो कि मुक्ति में संदेह, अरे भाई जिसका नाम लेने से जीवा पर एक बार नाम ले तो कुत्ते का मांस खाने वाला भी पवित्र हो जाए और वो स्वयं बैठ करके सामने उपदेश कर रहा हो, फिर मुक्ति में संदेह कैसा हो सकता है। जिसके नाम की इतनी महिमा हो, जिसकी नाम की इतनी लीला हो, गुणगान करते हैं महापुरुष और वो स्वयं साक्षात सामने बैठ करके उपदेश करे तो मुक्ति में कैसा संदेह। भगवान का नाम महान है, दोबारा आइए भगवान के प्यार प्रेम पूर्वक।
नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण
विष्णुवासुदेव हरि
कृष्णवासुदेव
हरि
कृष्णवासुदेव
हरि कृष्णवासुदेव
हरि
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन
कृष्ण गोविंद नारायण
कृष्ण गोविंद नारायण
कृष्ण गोविंद नारायण अच्युतानंद गोविंद माधव
अच्युतानंद गोविंद माधव
हे अच्युतानंद गोविंद माधव
अच्युतानंद गोविंद माधव
सच्चिदानंद नारायण हरि
सच्चिदानंद नारायण
हो सच्चिदानंद नारायण हरि नारायण 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 नारायण
बोलिए
जय जय नारायण 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 नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नमो नारायण
नारायण नारायण
वासुदेव हरि
कृष्णवासुदेव
हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव
कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि कृष्णवासुदेव हरि
कृष्णचंद्र भगवान। माता जी ने कहा कि अब हमको कुछ नहीं जानना है, सब संदेह चले गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो भगवान ने कहा फिर अब हमारा कोई काम नहीं, जाओ। माता जी कहती हैं आराम से जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। और माता जी भगवान कपिल को विदा किया, तो कपिल को विदा करने के बाद उनका ज्ञान भी विदा कर दिया हो ऐसा नहीं, जो उन्होंने सिखाया उसका उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। भगवान सुखदेव संक्षेप में कहते हैं वासुदेव प्रविष्ट थी, जो कुछ किया था उस बुद्धि को भगवान के चिंतन में स्थित कर दिया, स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति को प्राप्त हो गई। वासुदेव भगवान में अपनी बुद्धि को स्थित कर दिया और अवधूत अवस्था में रहने लगे। शेष कल अब कृपा की बात कह रहा था लेकिन भजन में कृपा का ही सुनाऊंगा। आइए, बड़ा आनंद हुआ स्वामी जी पहुंच पधारे, चले प्रेम से गाए।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम,
गाइए गाइए,
दयालु भगवन संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन संभालो बिगड़ी। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भक्ति तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे ताप हारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो दयालु भगवन। सुखदेव भगवान की
ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ॐ